समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं आकर्षिता सिंह और मेरे साथ है मेरे को होस्ट अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, आपको भी मेरा नमस्कार।
हेलो आकर्षिता, नमस्कार। हेलो एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल आवर लिसनर्स। यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा ऑन 100.1 FM। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय एंड विद मी टुडे इज माय को-होस्ट आकर्षिता। एंड लिसनर्स, फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, अ डिस्कशन सेगमेंट, डेट एंड इंडिया, रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। वी बिगिन विद द न्यूज हेडलाइंस फर्स्ट। Prime Minister Narendra Modi to be guest of honor at Maldives 60th Independence Day celebrations in Male in a short while from now.
प्रधानमंत्री आज शाम तमिलनाडु के तूतीकोरिन में 4,800 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे।
कारगिल विजय दिवस बीन सेलिब्रेटेड अक्रॉस द कंट्री टुडे टू ऑनर ब्रेवरी ऑफ इंडियन सोल्जर्स ड्यूरिंग 1999 कारगिल वॉर।
बिहार सरकार ने राज्य में पत्रकारों की मासिक पेंशन 6,000 रूपये से बढ़ाकर 15,000 रूपये कर दी है।
क्रॉस बॉर्डर फाइटिंग बिटवीन थाईलैंड एंड कैम्बोडिया एंटर्स थर्ड डे, डेथ टोल राइजेस टू 33।
और अब से कुछ ही देर में कोनेरू हम्पी जॉर्जिया के बाटुमी में फिडे महिला विश्व कप शतरंज के फाइनल में अपने ही देश की दिव्या देशमुख से खेलेंगी।
And now, listeners, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about Kargil Vijay Divas.
आज करगिल विजय दिवस पर पूरा देश उन बहादुर वीरों को नमन कर रहा है जिन्होंने 1999 की भारत पाकिस्तान युद्ध में अपनी जान की कुर्बानी दे दी।
Yes, Kargil Vijay Divas marks the glorious victory of our soldiers braving snow-clad peaks and relentless enemy fire, reclaimed the heights of Kargil with unmatched courage and unwavering resolve.
ये दिन ऑपरेशन विजय की सफलता का प्रतीक है। इसमें भारतीय सेना ने करगिल के उन इलाकों को दोबारा अपने नियंत्रण में लिया जहां पाकिस्तानी सैनिकों और आतंकवादियों ने घुसपैठ की थी। 26 जुलाई को बलिदान, वीरता और अटूट राष्ट्रीय भावना का प्रतीक तिरंगा एक बार फिर लद्दाख की दुर्गम पहाड़ियों पर लहराया।
एंड लिसनर्स, डिड यू नो दैट इन द समर ऑफ 1999 व्हाइल द रेस्ट ऑफ इंडिया बैटल्ड द स्वेल्टरिंग हीट, अ डिफरेंट वॉर रेज्ड हाई इन द आइसी हिमालयस। इट वाज नॉट अ वॉर फॉट इन द स्प्रॉलिंग डेजर्ट्स और रोलिंग प्लेन्स, बट ऑन जैग्ड पीक्स वेयर ऑक्सीजन वाज स्कार्स, टेम्परेचर्स अनफॉरगिविंग, and every inch of ground came at the cost of blood. This was the Kargil War more than a military operation. It was a test of faith, resilience and sacrifice.
ऊंचाई वाले क्षेत्रों में असामान्य हलचल की हल्की सी आहट जल्द ही एक खतरनाक युद्ध में तब्दील हो गई। बटालिक, द्रास और काकसर में भारतीय गश्ती दल को भारतीय सीमा में जमे घुसपैठियों का पता चला। ये कोई मामूली विद्रोही नहीं थे, ये पाकिस्तानी सैनिक थे जो बर्फीली चट्टानों पर चढ़ाए थे, हथियारों और रसद के साथ खुदाई कर रहे थे और श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाली महत्वपूर्ण जीवन रेखा को काटने के इरादे से यहां पहुंचे थे।
इंडिया रिस्पॉन्डेड विद ऑपरेशन विजय, अ मिशन दैट कंबाइंड मेटिकुलस प्लानिंग, स्टीली डिटरमिनेशन एंड द इनडोमिटेबल स्पिरिट ऑफ हिज सोल्जर्स।
करीब 60 दिनों तक चला ये युद्ध आज के दिन ही खत्म हुआ था। हिमालय की ऊंची पहाड़ियां भी भारतीय सैनिकों के साहस के आगे छोटी पड़ गई जब उन्होंने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया और वहां तिरंगा फहराया।
Yes, and India's response was measured but firm. There was no rush for vengeance, only an unwavering determination to restore every inch of violated land. The operation that followed was not about swift maneuvers across open fields. It was about clawing back peaks meter by meter in some of the harshest conditions on earth. Names like Tololing, Tiger Hill and Point 4875 became battle cries and symbols of national pride.
इस युद्ध में कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन मनोज कुमार पांडे, लेफ्टिनेंट किशिंग क्लिफोर्ड नोक्रूम और ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव जैसे जाबाजों ने युद्ध में भारत की जीत का परचम लहराया। इस युद्ध में कठिन भौगोलिक हालात भारतीय सेना के मजबूत इरादों को डिगा नहीं सके और प्रत्येक जवान ने अपनी अद्भुत वीरता का परिचय दिया। पॉइंट 4875 पर कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपने प्राणों की आहुति देने से पहले अपने निडर और अमर शब्दों में कहा था, ये दिल मांगे मोर।
Our radio said, none of the Pakistani soldiers or officer, whosoever it was, he said me, my code name was Shesha. Oh Shesha, you have come. Don't try to come up, otherwise you'll have a tough time. And that was the time they gave us a challenge. And my guys, they went wild. How dare a Pakistani troop can challenge us? My company's success can allow us, ye dil mange more. The guys were so highly charged up that they're wanting that some more bunkers should have been there and we would have got the more chaps.
These men endured not just bullets but the wrath of nature, bone-chilling winds, sub-zero temperatures and oxygen levels that tested endurance at every breath.
हफ्तों तक चले युद्ध के बाद भारत ने नियंत्रण रेखा पार किए बिना ही सभी कब्जे वाली चौकियों पर कब्जा कर लिया था। उकसावे के बावजूद इस संयम ने अंतर्राष्ट्रीय कानून की रक्षा की और दुनिया भर में भारत का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया।
एंड टुडे एज वी पे होमेज टू द हीरोज ऑफ 1999, वी रीअफर्म अ टाइमलेस ट्रूथ, इंडियाज यूनिटी एंड सॉवरेनिटी विल फॉरएवर रिमेन इनवायलेबल। The spirit of Kargil also resonates in India's clear and firm response to cross-border terrorism.
Surgical strike, Balakot Hawaii Karwai aur haal hi mein kiye gaye Operation Sindoor ne ek spasht sandesh diya hai. Bharat shanti chahta hai, lekin uksave par wo nirnayak karwai karne mein kabhi piche nahi hatega.
The victory of Kargil was not only a military achievement, it was a message to the world that India will safeguard its sovereignty under all circumstances. This spirit continues to guide the country's security policy even today.
भारत ने लंबे समय तक संयम बरतने के बाद आतंकवाद को प्रायोजित या समर्थन करने वालों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की स्पष्ट रणनीति अपना ली है।
Yes, and so to conclude our discussion on Kargil Vijay Divas, for your relentless vigilance at our borders, for your courageous sacrifices on the battlefield, and for your unwavering spirit in times of crisis, we salute our Indian Armed Forces.
Jai Hind, Jai Bharat. और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है।
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्रेजेंटेड विषम क्यूब्स टू मालदीव्स प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइजू यस्टरडे। प्राइम मिनिस्टर मोदी सेड दैट भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हिता एंड मैत्री विषम इज अ सिंबल ऑफ इंडियाज कमिटमेंट टू टाइमली एंड कंपैशनेट हेल्थ केयर सपोर्ट। दीज डिप्लॉयबल मेडिकल क्यूब्स कैरी इसेंशियल मेडिसिन एंड इक्विपमेंट फॉर इमरजेंसी केयर। वी हैव मोर फ्रॉम अ कॉरेस्पॉन्डेंट।
The Bhishma Cube is a modular, self-reliant healthcare unit developed under the India's Arogya Maitri program. Designed to serve areas lacking immediate medical infrastructure, the cube comprises 72 compact modules that unfold into a fully equipped clinic. Each cube set has the capacity to treat up to 300 people within the first 48 hours of crisis, such as storm, flood, outbreak, mass gathering, etc. In an exclusive interaction with Akashwani, Air Marshal Sandeep Thareja, Director General of Medical Services, Indian Air Force, shared details of a Bhishma Cube.
Now, over the years, every country has this problem that moving the medical resources itself takes time. So one is speed of deployment. The second thing is, after reaching the place, how to deploy fast and have ready-made solutions to save time. So that is the basic genesis of the Bhisham thing. It is basically initiative to bring all the neighboring countries in one group, with India leading the process. And what is very relevant to understand is that 98% of our entire equipment is made in India.
Bhishma Cube is also equipped with solar-powered operation theater, enabling life-saving surgeries, including C-section. Notably, the Bhishma Cube is also equipped with a water drone, Tarini, which is particularly beneficial for an island nation like Maldives, facilitating rapid response and medical aid delivery. Maldives President Dr. Mohamed Muizu expressed his gratitude to India for its pivotal role as a principal partner in health sector. He emphasized that the donation of Bhishma medical cubes is a vital asset for Maldives.
I thank the government of India for its role as the Maldives' principal partner in the health sector. The donation of medical cubes is a critical asset for a geographically dispersed nation like the Maldives.
The island edition of Bhishma Cube is a cutting-edge self-reliant micro-hospital specifically designed for an atoll nation. This innovative unit consists of a 4-man portable trunks that can be swiftly assembled in a minute, transforming into a fully equipped clinic operating station and 4-bed high dependency bay. The cube features its own power supply, oxygen, digital X-ray, fast ultrasound, and a smart laboratory, ensuring comprehensive medical care. Additionally, the cube comes with supporting infrastructure including tents, lighting, water safety kits, and a Tarini water drone for rapid deployment. With this capability, one CubeSat can provide medical treatment to up to 300 individuals. Jeevan Bhavsar, Akashwani News, Male, Maldives.
भारत और कोरिया के रिश्तों का मजबूत स्तंभ रामनगरी अयोध्या का रानी हो पार्क एक बार फिर गुलजार है। कोरिया की महारानी की याद में बनाया गया रानी हो पार्क अयोध्या से कोरिया के गहरे रिश्तों को दर्शाता है। पेश है हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
रामनगरी अयोध्या में इन दिनों रानी हो पार्क फिर चर्चा में है। कोरियाई मेहमानों के 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने इस पार्क का दौरा कर यहां की व्यवस्थाओं को सराहा है। पार्क का भ्रमण करने के बाद कोरियाई दूतावास के डिप्टी एम्बेसडर वन हो शिन ने कहा कि यह मेरा पहला अयोध्या दौरा है। यह पार्क भारत और कोरिया के महत्वपूर्ण संबंध का एक प्रतीक है।
नमस्ते, मेरा नाम इमसांग हो है। मैं कोरियाई दूतावास में डिप्टी एम्बेसडर हूँ। मेरे पहली बार अयोध्या का विजिट है। इस पार्क कोरिया और भारत संबंध का एक बहुत महत्वपूर्ण सिंबल है। मुझे बहुत बहुत खुशी हुई क्योंकि दिस पार्क बहुत बहुत बढ़िया है और दाएं ओर भारत सिंबल, दाएं ओर कोरिया सिंबल एक ब्रिज है, तो कोरिया एंड भारत दे गेट टुगेदर।
मालूम हो कि अयोध्या की राजकुमारी सूरी रत्ना करीब 2000 वर्ष पहले कोरिया गई थीं, जहां उन्होंने कोरिया के राजकुमार किंग सूरो से विवाह कर लिया था। यही कारण है कि अयोध्या में कोरिया के लोगों को खास सम्मान दिया जाता है। मई 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण कोरिया की यात्रा के दौरान अयोध्या के सरयू तट पर हॉन्ग ओक की याद में बने संग्रहालय के विस्तार और सौंदर्यीकरण करने पर सहमति दी थी, जिसके बाद अयोध्या में इस पार्क का निर्माण प्रारंभ हुआ जो 2021 में पूर्ण हुआ, जिसकी खूबसूरती और आभा आज सभी को लुभाती है। पार्क के निर्माण में प्रदेश सरकार और कोरिया ने संयुक्त रूप से भूमिका निभाई है। कोरिया से मेहमान प्रत्येक वर्ष अयोध्या आते हैं और अपनी महारानी को श्रद्धांजलि देते हैं। परिक्रमा के लिए ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
लद्दाख इज नोन फॉर इट्स ड्रामेटिक लैंडस्केप्स एंड वाइब्रेंट ट्रेडिशन। वन सच फेस्टिवल दैट थ्रिल्स एवरी इंडिविजुअल हियर इज द लद्दाख पोलो फेस्टिवल, अ फास्ट एंड फ्यूरियस गेम्स दैट इज प्लेड राइडिंग ऑन द बैक ऑफ अ हॉर्स। मोर ऑन दिस फ्रॉम अ लेह कॉरेस्पोंडेंट।
Polo is an ancient traditional game played with pride and dignity. The game, which showcases the heritage and culture of the region, is played with 2 teams consisting of 6 players in each team, and every goal scored by a player is accompanied by traditional music played with traditional folk instruments called Dhaman and Surna. It's believed that the game of Polo was introduced to Ladakh in the 15th century through a princess belonging to Baltistan who also also happened to be the mother of Ladakh King Singe Namgyal. Since then, the game has grown in popularity and is considered to be an essential part of Ladakhi culture. This game is played mainly during festivals like Ladakhi Losar and Navroz. However, the polo played in Ladakh during these festivals are different from the polo being played elsewhere internationally. Here in Ladakh, the game is played on arid land called as Shagaran, which makes it tougher and more demanding. Chief Secretary UT Ladakh, Dr. Pawan Kotwal, said that the administration of UT Ladakh has introduced many initiatives to promote traditional games like polo. Besides, he mentioned Ladakh athletes to get preference in government jobs.
लद्दाख स्पोर्ट्स पॉलिसी जो है वो अभी हमने शुरू की है और उसमें एक तो ये होता है कि आप कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट या नेशनल टूर्नामेंट या स्टेट लेवल टूर्नामेंट जीतते हैं तो एक तो आपको कैश रिवॉर्ड मिलता है जिसको हम अवार्ड कहते हैं या सर्टिफिकेट कहते हैं। दूसरा इसका लॉन्ग टर्म लोगों को ये होता है कि जो ये हमने किसी ने इंटरनेशनल लेवल पे किया, किसी ने नेशनल लेवल पे किया, किसी ने स्टेट लेवल पे किया, तो क्या उसको नौकरी में यानी कि एम्प्लॉयमेंट में जब वो एम्प्लॉय करेगा कोई नॉन कस्टर्ड कार्डर्स में तो क्या उसको वहां कोई प्रेफरेंस मिलेगी। तो उसके लिए भी हमारी एक स्कीम जो है हमने अब रिक्रूटमेंट रूल्स में हम तब्दीली ला रहे हैं कि ये जो स्पोर्ट्स जो हमारे आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन है उनको गवर्नमेंट की नौकरियों में भी वो उनको प्रेफरेंस दी जाए।
To promote and preserve this traditional game, to promote tourism in the region and to engage more local youth in this game, Indus Chushot Polo Club, in collaboration with the concerned department of the administration of Union Territory of Ladakh, organizes a week-long Ladakh Polo Festival in the month of July every year as an annual event. For Parikrama, this is Phunsuk Wangmo from Leh Ladakh.
Yes, and on to some sports news. In chess, Koneru Hampi will face fellow Indian Divya Deshmukh in the final of the FIDE Women's World Cup 2025 at Batumi, Georgia. The match will just begin just minutes from now. And the All India Class guarantees a spot in next year's FIDE Women's Candidates Tournament, where the winner will earn the right to challenge Zhu Wenjun for the World Championships title. And this is a momentous occasion for women's chess in India, with both the winner and the runner-up position secured in a tournament of such global stature. And on to some cricket news. In cricket, hosts England with 643 for 8 in the first innings against India on day 4 of the fourth test of the Anderson Tendulkar Trophy at Old Trafford in Manchester. When reports last came in, the hosts were leading by 285 runs a short while ago.
और अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
On July the 26th, 1876, Surendranath Banerjee, along with Anand Mohan Bose, founded the Indian National Association in Calcutta. The Indian Association was the most prominent of the pre-Congress organizations.
Social and economic changes started occurring in the 19th century that also led to an increase in the political consciousness, leading to the birth of political associations and national movements for independence. In 1875, Sisir Kumar Ghosh and Shambhu Charan Mukherjee founded the India League to represent the middle class and work towards a sense of nationalism among the people.
However, the League was dismembered and afterwards, Surendranath Banerjee founded the Indian Association along with his friend Ananda Mohan Bose on the 26th of July, 1876. It wanted to bring about the unity of the Indian races and peoples on the basis of common political interests and aspirations. It objected to the decrease in the age limit for candidates for the Indian Civil Service Examination in 1877.
The association advocated for simultaneous civil service examinations in England and India, as well as the Indianization of higher administrative positions. The Indian Association also spearheaded a campaign to repeal the Repressive Arms Act and the Vernacular Press Act.
The Indian Association established branches in other towns and cities throughout Bengal, as well as outside of Bengal. The membership fee was kept low in order to attract members from the poorer sections of society. The association sponsored the first All India Conference, which was held in Calcutta from December the 28th to 30th, 1883. More than 100 delegates from across the country attended. The Indian Association later merged with the Indian National Congress in 1886.
We remember Malti Devi Chaudhary, who was an Indian civil rights and freedom activist, born on the 26th of July, 1904. She was deeply influenced by both Gurudev Rabindranath Tagore and Mahatma Gandhi. While studying at Shantiniketan, she met her future husband and they both relocated to present-day Odisha.
The salt satyagraha started soon after and Malti Devi Chaudhary threw herself into the movement. She had organized the Krishika Andolana, that is the farmers' movement, as part of the freedom struggle against the zamindars and moneylenders who exploited the poor.
After independence, Malti Chaudhary, as a member of the Constituent Assembly of India and as the president of the Utkal Pradesh Congress Committee, tried her best to emphasize the role of education, especially adult education, in rural reconstruction. She also joined the Bhudan movement of Acharya Vinoba Bhave. The noble soul breathed her last on the 15th of March, 1998.
Yes, and we also remember Madhusudan Kanungo, who passed away on this day in 2011. He was an Indian scientist in the field of gerontology and neuroscience, as well as a teacher of molecular biology and biochemistry. He is known for his theories on how gene expression changes with age and the role of this phenomenon in aging, which is widely accepted as gene expression theory of aging. In recognition of his contributions, he was awarded India's fourth highest civilian award, Padma Shri, in 2005, and he held the post of BHU Emeritus Professor in Zoology at the Banaras Hindu University and was also the Chancellor of Nagaland University till his death.
आज भारत के प्रसिद्ध विद्वानों में से एक वासुदेव शरण अग्रवाल की पुण्यतिथि है। वे भारत के इतिहास, संस्कृति, कला, साहित्य और प्राच्य विद्या आदि विषयों के विशेषज्ञ थे। वासुदेव शरण अग्रवाल हिंदी विश्वकोश संपादक मंडल के प्रमुख सदस्य थे। उन्होंने मथुरा संग्रहालय के संग्रहाध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की थी और स्वतंत्रता के बाद दिल्ली में स्थापित राष्ट्रीय पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना में इनका प्रमुख योगदान रहा। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक पाणिनि कालीन भारतवर्ष भारत की संस्कृति, कला और साहित्य को दर्शाती है। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
Yes, and Dame Helen Mirren was born on this day 1945. She is an English actor with a career spanning over 6 decades of screen and stage. Her accolades include an Academy Award, 5 Emmy Awards, a Tony Award, 4 BAFTA Awards and a Laurence Olivier Award. And she's the only person to have achieved both the US and UK triple crowns of acting and has also received the BAFTA Fellowship, Honorary Golden Bear and the Screen Actors Guild Lifetime Achievement Award. Helen Mirren was made the Dame Commander of the Order of the British Empire by Queen Elizabeth II in 2003.
आज भारत की प्रसिद्ध कवित्रियों में से एक विद्यावती कोकिल की जयंती है। उनकी प्रारंभिक रचनाओं का प्रथम काव्य संकलन प्रणय, प्रगति और जीवानुभूति के हृदयग्राही गीतों के संग्रह के रूप में प्रकाशित हुआ था। कोकिल जी मूलतः एक गीतकार थी। गीती तत्व की सहज तरलता उनकी कविताओं की आंतरिक विशेषता थी। उनकी प्रमुख रचनाएं रही सुहागिन माँ, सुहागीत, पुनर्मिलन, फ्रेम बिना तस्वीर, अमर ज्योति आदि। आइए सुनते हैं उनकी ये कविता।
कौन गाता जा रहा है मौनता को शब्द देकर, शब्द में जीवन सजो कर, कौन बंदी भावना के पर लगाता जा रहा है, कौन गाता जा रहा है।
अखिल भारत के काव्य मंचों और आकाशवाणी केंद्रों से फैलती हुई उनकी सहज मधुर काव्य स्वर लहरी इनके कोकिल उपनाम को सार्थक करती रही। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने कारावास यात्रा भी की। अनेक सेवा संस्थाएं तथा जन योजना इनके सहयोग से संपन्न होते रहे।
सैंड्रा बुलॉक वॉज बोर्न ऑन दिस डे 1964। शी इज एन अमेरिकन एक्ट्रेस एंड फिल्म प्रोड्यूसर। Bullock's filmography spans both comedy and drama, and her accolades include an Academy Award and a Golden Globe Award. After making her acting debut with minor role in the thriller Hangmen in 1987, Bullock received early attention for a supporting role in the action film Demolition Man in 1993. Her breakthrough in the action thriller Speed in 1994 led to leading roles in the romantic comedy While You're Sleeping in 1995 and the dramas A Time to Kill in 1996 and Hope Floats 1998. And also, Akarshita, Sir Michael Philip Jagger was born on this day in 1943. He's an English musician. He's known as the lead singer and one of the founder members of the Rolling Stones. Jagger has co-written most of the band's songs with lead guitarist Keith Richards. Their songwriting partnership is one of the most successful in rock history. Let's listen in to the band's hit track, Painted Black.
I see a Richter and I want it painted black. No colors anymore, I want them to turn black.
आज टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के संस्थापक निदेशक उबैद सिद्दीकी की पुण्यतिथि है। उन्होंने ड्रोसोफिला के जेनेटिक्स और न्यूरोबायोलॉजी का उपयोग करके व्यवहारिक न्यूरोजेनेटिक्स के क्षेत्र में मौलिक योगदान दिया। न्यूरोजेनेटिक्स के क्षेत्र में उबैद सिद्दीकी के अध्ययन ने जीन, व्यवहार और मस्तिष्क के बीच की गड़ी को उजागर किया। उन्हें भारत सरकार ने सन 1984 में विज्ञान और अभियांत्रिकी के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया।
ऑल्डस लियोनार्ड हक्सली वाज बोर्न ऑन दिस डे इन 1894। ही वाज एन इंग्लिश राइटर एंड फिलोसोफर। हिज बिब्लियोग्राफी स्पैन्स नियरली 50 बुक्स इंक्लूडिंग नॉन फिक्शन वर्क्स एज वेल एज एसेज, नैरेटिव्स एंड पोएम्स। बोर्न इनटू द प्रोमिनेंट हक्सली फैमिली, ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम बेलियॉल कॉलेज ऑक्सफोर्ड विद अ डिग्री इन इंग्लिश लिटरेचर। Early in his career, he published short stories and poetry and edited the literary magazine Oxford Poetry before going on to publish travel writing, satire and screenplays. He spent the latter part of his life in the United States, living in Los Angeles from 1937 until his death. And by the end of his life, Huxley was widely acknowledged as one of the foremost intellectuals of his time. He was nominated for the Nobel Prize in Literature 9 times and was elected Companion of Literature by the Royal Society of Literature in 1962.
आज प्रसिद्ध भारतीय योगाचार्य कृष्ण पट्टाभी जोइस की जयंती है। उन्होंने भारत में योग के महत्व को समझाया। वे प्रथम भारतीय गुरु थे जिन्होंने सत्संग विन्यास जैसी योग की शुरुआत की। उनके द्वारा 19वीं सदी के दौरान योग शोध संस्थान भी खोला गया।
Yes, and Roger Meadows Taylor was born in this day 1949. He is an English musician, songwriter and record producer. He achieved international fame as a drummer and backing vocalist for the rock band Queen. As a drummer, Taylor was recognized early in his career for his unique sound and was voted the 8th greatest drummer in classic rock music history in a listener poll conducted by Planet Rock in 2005. He was inducted into the Rock and Roll Hall of Fame in 2001 as a member of Queen. Let's listen in to the band's hit track, Bohemian Rhapsody, and it's from the 1975 album, A Night at the Opera.
Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a
आज समाज सुधारक छत्रपति साहू महाराज की जयंती है। उन्होंने दलित वर्ग के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू की थी। गरीब छात्रों के छात्रावास स्थापित किए और बाहरी छात्रों को शरण प्रदान करने के आदेश दिए। साहू महाराज के शासन के दौरान बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया। उन्होंने अंतरजातीय विवाह और विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में समर्थन की आवाज उठाई थी। साहू महाराज ज्योतिबा फुले से प्रभावित थे और लंबे समय तक सत्य शोधक समाज फुले द्वारा गठित संस्था के संरक्षण भी रहे।
जेसम स्टेटम वाज बोर्न ऑन दिस डे 1967। ही इज एन इंग्लिश एक्टर। ही इज नोन फॉर पोर्ट्रेइंग टफ, ग्रिटी और वायलेंट कैरेक्टर्स इन वेरियस एक्शन थ्रिलर फिल्म्स एंड हैज बीन क्रेडिटेड फॉर लीडिंग द रिसर्जेंस ऑफ एक्शन फिल्म्स ड्यूरिंग द 2000s एंड 2010s। And also, Akarshita, George Bernard Shaw was born on this day in 1856, known for at his insistence as Bernard Shaw. He was an Irish playwright, critic, polemicist and political activist. His influence on Western theater culture and politics extended from the 1880s to his death and beyond. He wrote more than 60 plays, including major works such as Man and Superman.
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए आकर्षता और अभिषेक को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन करिए हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर।
नमस्कार।